स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 30 अक्टूबर और दिन बुधवार। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों ने 5 मजदूरों को मौत के घाट उतारा।
ये घटना कल रात 9 बजे दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में कातरसू गांव में घटी है।
ब्रिटेन में 12 दिसंबर को होंगे आम चुनाव, संसद ने दी मंजूरी। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में सफर हुआ मुफ्त।
ये पूरी दुनिया में पहली ऐसी स्कीम है जहां पे महिलाओं को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी पेशे की हो, उनको बस ट्रैवल फ्री करने का।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। ब्रिटेन में आगामी 12 दिसंबर को आम चुनाव होगा। ब्रिटानी सांसदों ने 12 दिसंबर को आम चुनाव कराए जाने के पक्ष में वोट दिया है। संसद में चुनाव के पक्ष में 438 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 20 सांसदों ने। इस तरह 418 वोटों के बहुमत से ब्रिटानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 12 दिसंबर को चुनाव कराने की योजना कामयाब हो गई है। पिछले 5 वर्षों में ये ब्रिटेन का तीसरा आम चुनाव होगा। भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम जिले के कातरसू गांव में मंगलवार को चरमपंथियों ने 5 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब यूरोपीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचा हुआ है। बीते कुछ वक्त में कश्मीर में वहां से बाहर के लोगों पर हमलों का सिलसिला तेज हुआ है। लेबनान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री साद अल हरीरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि लेबनान राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है और इस संकट से उबरने के लिए उसे एक चौंकाने वाले फैसले की जरूरत है। लेबनान के लोग पिछले 13 दिनों से एक फैसले का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे राजनीतिक समाधान का इंतजार कर रहे थे जो ये हालात बदतर होने से रोक सके। मैंने इस दौरान लोगों की आवाज़ सुनने और देश को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधित खतरों से बचाने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं ये आपसे छिपा नहीं पाऊंगा कि मेरे सब्र का अंत हो चुका है। मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। ईश्वर लेबनान की रक्षा करे। ये थे लेबनान के राष्ट्रपति साद अल हरीरी। लेबनान की जनता राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और हाल ही में व्हाट्सएप कॉल्स पर लगाए टैक्स के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूसी अधिकारियों ने तुर्की को बताया है कि उत्तर पूर्वी सीरिया में बनाए जा रहे सुरक्षा कॉरिडोर से कुर्द लड़ाकों को हटाए जाने का काम पूरा हो चुका है। तुर्की और सीरिया की सीमा से लगे इस क्षेत्र से कुर्द लड़ाकों को हटाने की समय सीमा मंगलवार को खत्म हो गई। तुर्की और रूस ने एक समझौते के तहत ये समय सीमा तय की थी। रूस और तुर्की के बीच हुए इस समझौते से उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्की के हमलों पर विराम लग गया है। इस समझौते का प्रमुख मकसद तुर्की सरकार द्वारा घोषित सेफ जोन से सभी कुर्द लड़ाकों को बाहर निकालना था। इसके बाद तुर्की, रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों ने जिनेवा में एक बैठक की और उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुतु चावुशोलू ने कहा कि बुधवार को सीरिया की संसदीय समिति की पहली बैठक होगी।
We are also keen on the returns of the refugees and the returns must be safe and voluntary.
हम ये चाहते हैं कि सीरियाई शरणार्थी अपनी मर्जी से और सुरक्षित ढंग से वापस आएं। इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का पूरा सम्मान भी होना चाहिए। हमें यकीन है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलने पर सीरिया के आतंक मुक्त इलाकों में 20 लाख सीरियाई वापस आ सकते हैं। ये थे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुतु चावुशोलू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के करबला शहर में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कम से कम 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। वहीं सरकार किसी भी प्रदर्शनकारी की मौत की बात से इनकार कर रही है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 30 तारीख और दिन है बुधवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भारत प्रशासित कश्मीर से। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 5 बाहरी मजदूरों की कल रात संदिग्ध चरमपंथियों ने हत्या कर दी। ये घटना ऐसे दिन हुई है जब यूरोपीय संघ के 27 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर में हालात का जायजा लेने पहुंचा है। इससे पहले सोमवार को अनंतनाग जिले में संदिग्ध चरमपंथियों ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। ताज़ा घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
ये घटना कल रात 9 बजे दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में कातरसू गांव में घटी है और पुलिस का कहना है कि अब चूंकि पहले तो अगस्त में एक एडवाइजरी थी कि जो भी यहां जम्मू कश्मीर से बाहर का है, चाहे वो यात्री है, पर्यटक है या मजदूर है, वो यहां से चला जाए। अब चूंकि जो प्रतिबंध है वो धीरे धीरे नरम किए जा रहे थे और जो पर्यटन पर एडवाइजरी थी वो भी हटा ली गई थी, तो अब पर्यटन तो नहीं बढ़ा, पर्यटक बहुत कम संख्या में आए, लेकिन मजदूर चूंकि उनका व्यवसाय चलता है कश्मीर से, वो आने लगे थे। चूंकि इस सीजन में वो सेब उतारने या फसल काटने का काम करते हैं और भी कई तरह के काम करते हैं, तो ये मजदूर जो है यहाँ कातरसू गाँव में किराए पे रहते हैं एक घर में। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध जो बंदूकधारी हैं वो इनके वो रेंटेड अपार्टमेंट में घुसे और वहां से उनको बाहर निकाल के उन पर फायरिंग कर दी और उनको उनमें से 5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और एक घायल हुआ है। 5 में से 3 की शनाख्त जो है वो पुलिस ने मुरसलीन अहमद कमरदीन और मोहम्मद रफीक के तौर पर की है और बताया जाता है कि ये बिहार के लोग हैं।
और इस बीच रियाज, एक सिलसिला सा शुरू हो गया है भारत प्रशासित कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले का चरमपंथियों की ओर से, तो इसे वहां किस तरह से देखा जा रहा है, ये सिलसिला क्या कहता है?
कि देखें, लोग तो पहले से ही एक असामान्य स्थिति में रह रहे हैं और ये जो ट्रक ड्राइवर्स का मारा जाना है, कोई 5 लोग मारे गए हैं जिनमें 4 ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन इससे एक जो डर है उसकी लहर सी फैल गई है। जाहिर है उससे जो एप्पल हार्वेस्ट के साथ जुड़ा व्यवसाय है वो भी प्रभावित हुआ है जरूर, क्योंकि कई सारे ट्रक्स जो यहाँ पे माल लोड करने के लिए आए थे वो खाली वापस चले गए हैं जान बचाने के लिए। तो इसके बाद अब ये मजदूरों पर भी हमला होना, से जाहिर है एक वो जो प्रश्न चिन्ह लगता है, जिस तरह से प्रशासन और केंद्र सरकार कहती रही है कि यहाँ पे हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से एडवाइजरी हटा ली गई और पर्यटकों को आमंत्रित किया गया, कहा गया कि आप कश्मीर आ जाएं। अब तो यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन भी इस संदर्भ में इसीलिए यहाँ लाया गया ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि यहाँ हालात कितने सामान्य हैं। हालांकि सामान्य हालात नहीं है, क्योंकि पेरिफेरीज में जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नॉन लोकल्स पे हो रहे हैं। परसों रात को भी जम्मू क्षेत्र के एक ड्राइवर जिनका नाम नारायण दास था, उनको मारा गया बिजबिहाड़ा में, दक्षिणी कश्मीर का कस्बा है। तो इस तरह की ये जो हत्याएं हो रही हैं, बड़ी खबरें तो आ रही हैं, बड़ी सुर्खियां बन रही हैं, यूरोपियन यूनियन आ रहा है या कुछ घोषणाएं हो रही हैं या 31 अक्टूबर को समारोह है, लेकिन इसमें ये जो हत्याएं हो रही हैं इनसे जो अशांति का माहौल सा बन रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर न तो दिल्ली से कोई दे रहा है न गवर्नर प्रशासन से।
तो श्रीनगर से ये थे रियाज मसरूर। लेकिन श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग से एक अच्छी खबर भी है कि भारत प्रशासित कश्मीर का गुलमर्ग दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। लोग इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद यहाँ पर्यटन लगभग ठप हो गया था, लेकिन अब यहाँ सैलानी फिर आने लगे हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात पर क्या कहते हैं ये सैलानी, सुनिए गुलमर्ग से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
दुनिया भर में मशहूर और कश्मीर का ताज कहलाने वाले गुलमर्ग अभी तक पर्यटकों के इंतजार में है। गुलमर्ग में पसरे सन्नाटे के बीच चंद एक पर्यटक यहाँ का रुख कर रहे हैं। कलकत्ता से आई हुई कोइनी घोष 6 दिन पहले कश्मीर आई थी और सैर सपाटे के लिए गुलमर्ग की दिलकश वादियों में लुत्फानंदोज हो रही थी। उनका कहना था कि जो कश्मीर के बारे में सुना था ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है।
6 महीने पहले हम लोग का प्लान बना था, फिर तो न्यूज़ आया इधर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जो सब सुना है कलकत्ता में, जो सब न्यूज़ ऐसे फैल रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फेक। We heard that people are like directly get shooted here and then people are tortured.
لیکن کشمیر میں انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جنم دن بے مزہ ہو گیا.
انٹرنیٹ جیسے کہ کل میرا برتھ ڈے گیا تو ادھر تو کوئی کمیونیکیٹ کیا نہیں میرے سے. اینڈ ہر ایک پوائنٹ پہ ہم لوگ کو مدد کرنے کا کوشش کیے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں.
کلکتہ کے ایک دوسرے پریٹک سارو گوش کا کہنا تھا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے کشمیریوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے.
پہلے ہم لوگ سب they will be the enemy, they will be the mera dushman hai, we have come from Kolkata, but udhar se dekha ye pura ulta ho gaya.
کشمیر میں پریپیڈ موبائل انٹرنیٹ سیوا نہ ہونے اور بند دکانوں سے انہیں پریشانی ضرور ہوئی. سرکار نے 10 اکتوبر کو کشمیر سے پریٹکوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری کو ہٹا دیا ہے. 5 اگست سے چند دن پہلے سرکار نے ایک ایڈوائزری جاری کر کشمیر میں موجود پریٹکوں اور امرناتھ یاتریوں کو کشمیر خالی کرنے کے لیے کہا تھا. بھارت سرکار نے 5 اگست کو جموں کشمیر سے انوچھید 370 کو ہٹایا, جس کے بعد کشمیر میں حالات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے. 5 اگست کے بعد کشمیر میں پریٹن ادیوگ پر کافی برا اثر پڑا ہے. گلمرگ میں گوڑا چلانے والے عبد المجید کہتے ہیں,
بس یہ ہمیں تو 5-6 دن ہو گئے تو بس یہی 50-100 روپیہ ہم کماتے ہیں, کیونکہ ٹورسٹ تو اتنا آتا نہیں ہے یہاں پہ, ٹورسٹ 20-50 آتے ہیں.
ممبئی سے آئی ہوئی آشا سنانا بھی گلمرگ آئی ہوئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ 4 سال پہلے کے اور آج کے کشمیر میں بہت انتر ہے.
اباؤٹ 4 منتھس اگو ہم نے یہ پلان کیا تھا, تب اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ تب ہم لوگ ویری اوپنلی وی کوڈ گو اراؤنڈ. دس ٹائم ہم ایئرپورٹ میں آئے, ٹیکسی لیا, تب سے وہ ڈفرینس کافی ہے تب اور آپ کا ابھی کا. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, دا ٹیکسی ڈرائیورز, دا لوکلائٹس آئی تھنک کافی ڈرے ہوئے ہیں. یو کین فیل دیٹ اینگر آف پیپل, تو ہم ڈرے ہوئے ہیں.
اس امید اور ناامیدی کے بیچ میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پریٹک ادیوگ سے جڑے لوگ اپنا روزگار پھر ایک بار کما پائیں گے اور کیا پریٹک قطار در قطار کشمیر کا رخ کریں گے. ماجد جہانگیر, بی بی سی سری نگر.
اور اب بات راجدھانی دلی کی. راجدھانی دلی میں کل سے عام آدمی پارٹی کی سرکار نے سرکاری بسوں میں مہیلاؤں کے لیے مفت سفر کی یوجنا شروع کر دی. مفت سفر کرنے کے لیے مہیلاؤں کو بس کنڈکٹر سے گلابی رنگ کا سنگل جرنی پاس لینا ہوگا اور یہ پاس مفت ہوگا. مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے یہ بھی اعلان کیا کہ مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے بسوں میں 13,000 مارشلوں کی تعیناتی ہوگی, جس کے لیے بھرتیاں شروع ہو چکی ہیں. سنیے عام آدمی پارٹی کے نیتا آتشی نے اس یوجنا کے بارے میں کیا کہا.
دلی کی سرکار نے, اروند کیجریوال کی سرکار نے بس ٹریول کو مہیلاؤں کے لیے فری کیا ہے. یہ جو پہل ہے اروند کیجریوال جی کی, عام آدمی پارٹی کی سرکار کی, یہ پوری دنیا میں پہلی ایسی اسکیم ہے جہاں پہ مہیلاؤں کو, چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہوں, کسی بھی پیشے کی ہوں, ان کو بس ٹریول فری کرنے کا ادھیکار دیا جا رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک فری بس ٹکٹ نہیں ہے, یہ دلی میں مہیلاؤں کے امپاورمنٹ کی ایک شروعات ہے.
لیکن عام آدمی پارٹی کی سرکار کی اس یوجنا کو وپکشی بھاجپا نے چناوی اسٹنٹ قرار دیا. بھاجپا پردیش ادھیکش منوج تیواری,
دیکھیے اروند کیجریوال جی کا یہ سب الیکشن اسٹنٹ چل رہا ہے, چناوی اسٹنٹ ہے. جب چناؤ آیا ہے, 3 مہینہ ہے, تو آپ کو مہیلاؤں کا کلیان نظر آ رہا ہے. حالانکہ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں, مہیلاؤں کو, بہنوں کو یہ جو سنگل فری یاترا, ہم اس کا سواگت کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ 3 مہینے کے لیے ہی کیوں, 60 مہینے کے لیے کیوں نہیں؟ اور پھر مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اسٹوڈینٹس نے کیا تھا ڈیمانڈ کہ ہم کو بسوں میں فری ملے, تو اسٹوڈینٹس کو کیوں نہیں, سینئر سٹیزن کو کیوں نہیں؟
ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسوں میں مہیلاؤں کے مفت سفر کی یوجنا پر دلی واسیوں کی کیا رائے ہے؟ بی بی سی سنواد داتا انت پرکاش نے ایک بس کا سفر کرتے ہوئے لوگوں سے بات کی.
لیڈی سے جو بھی ہو اپنا فری ٹکٹ لے لینا, کوئی بھی مہیلا یاتری بغیر ٹکٹ نہ ہو.
کیا فائدہ ہوگا کیا, مطلب لیڈیز کو بیسکلی فائدہ ہی ہو رہا ہے, کیونکہ انہیں ٹریول کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, اور مطلب اس سے کوئی دقت بھی نہیں ہے اور سپورٹ بھی مل رہا ہے پورا پورا.
مہیلاؤں کو بہت سویدھا ہوگا, کیونکہ مہیلائیں جو ہیں, جو کام کازی مہیلائیں ہیں جن کو اپنے آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے, تو ان کا جو خرچہ ہے वो बहुत बच जाएगा। एंड क्योंकि आज की डेट में मैं मानती हूँ कि जितने पुरुषों को पेमेंट मिलती है, जो सैलरी पेड होता है, उससे बहुत कम ही होती है महिलाओं को एज़ कम्पेयर कर लो एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न।
लेडीज़ जो घर से निकलती नहीं थी जॉब करने के लिए, जो जिसके पास उतनी इनकम नहीं थी, किराया नहीं था, वो निकलेगी। वो अब मयूर विहार से जॉब करने वो बवाना भी जा सकती है, वो साउथ एक्स भी जा सकती है बिना पेमेंट के। और लेडीज़ का जो हिस्सेदारी है, जो 30% बताते हैं कि लेडीज़ ट्रैवल करती है बसेस में, वो डेफिनेटली बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
गरीब आदमी ही बस में चलता है, उनके लिए अच्छा है कि उनके दाढ़ी के लिए पैसे होते हैं, कम दाढ़ी कमाने जाते हैं, कम पैसे मिलते हैं, तो वो फ्री में जाएँ तो अच्छा है। लेकिन जो आम आदमी है, जिसके पास पैसा है, वो भी अगर फ्री में जा रहा है तो ये ठीक नहीं लग रहा।
पैसे तो नहीं देने पड़ रहे, खैर वो तो क्या 3 महीने के लिए फ्री कर देगा, फिर ले लेगा पैसे। कोई रोज़ तो जाते नहीं है, हम ऑफिस तो जाते नहीं है जो हमारे को फ्री में फ़ायदा होगा। हम तो एक भैया दो राखी पे आते जाते हैं, घर में ही रहते हैं, पैक 25-25 रुपये 50 रुपये में क्या हो रहा है। और सबसे बढ़िया तो यह है कि नौकरी लगाओ बच्चों को। मैं तो यही कहूँगी, अमीर के तो बच्चे नौकरी लगते नहीं हैं, गरीब के लगते हैं ना, तो गरीब को नौकरी दो ना।
जैसा कि आपने सुना कि दिल्ली में महिलाओं को बसों में मुफ्त सुविधा दी गई है अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा, लेकिन बस में चलने वाली महिलाओं की अलग अलग राय थी, जो आपको बता रहे थे बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है और मेरी सहयोगी सिंधु वासिनी तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बताएं सिंधु, क्या कहते हैं आपके अखबार?
इकबाल, कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की जो हत्या हुई है, ये खबर सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में पिछले 15 दिनों में 11 लोगों की हत्या हो चुकी है और ये सभी लोग कश्मीर से बाहर के थे, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर थे या फिर मजदूर थे। जनसत्ता ने इसी खबर को आधार बनाते हुए आतंक की चुनौती शीर्षक से संपादकीय भी लिखा है। अखबार लिखता है कि कश्मीर से जिस तरह लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो चिंताजनक है और कहीं न कहीं ये उन सरकारी दावों की पोल भी खोलती हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी कश्मीर की खबर जो इंडियन एक्सप्रेस से है, एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट कहती है कि संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने में देरी की। अखबार लिखता है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त रूपर्ट कॉलविल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लगी पाबंदियों, आने जाने की आज़ादी और मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदियों की मामलों की सुनवाई करने में तेज़ी नहीं दिखाई। और यूएन ने यह भी कहा है केंद्र की मोदी सरकार से कि कश्मीरियों के मूलभूत अधिकारों पर लगी पाबंदियों को जल्दी से जल्दी और पूरी तरह हटाया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के होने वाले अगले जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का इंटरव्यू प्रकाशित किया है। इस इंटरव्यू में जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि भारत में कुछ लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है और कुछ के पास बहुत कम है। उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और इससे जुड़ी बहस के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जहां कुछ लोग सार्वजनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी कहकर निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोगों को अपनी बात रखने तक के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जस्टिस बोबड़े की तस्वीर है पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ, वो उन्हें एक गुलदस्ता देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और खबर जो कई अखबारों में दिख रही है वो ये कि दुनिया के टॉप 10 सीईओज़ में 3 भारतीय मूल के सीईओ शामिल हैं। ये जो लिस्ट तैयार किया है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने किया है और इसमें जो सीईओ भारतीय मूल के शामिल हैं वो हैं सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शांतनु नारायण अडोबी के सीईओ और मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उससे भी ज़्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के तल्ख रवैये के बावजूद गुरुवार या शुक्रवार को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अखबार ने ये बातें बीजेपी सूत्रों के हवाले से लिखी है। दैनिक भास्कर सत्ता पर जुबानी ग्रहण हेडिंग से लिखता है कि महाराष्ट्र में नतीजे आने के 6 दिन बाद भी सरकार बनाने के फॉर्मूले पर बीजेपी और शिवसेना में सहमति नहीं बन सकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा क्योंकि बीजेपी ने 50-50 का वादा नहीं किया था। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हमारे पास प्लान बी नहीं है और हम शिवसेना के साथ ही मिलकर सरकार बनाएंगे। शिवसेना की तार्किक मांगों को माना जाएगा।
बहुत शुक्रिया सिंधु आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब चलते हैं ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन समय से पहले चुनाव कराने का प्रस्ताव चौथी बार ब्रिटिश संसद में पेश किया और उसमें वो सफल भी हो गए। सबसे पहले सुनते हैं कि स्पीकर जॉन बर्को क्या कहते हैं।
The eyes to the right 438, the nose to the left 20. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock. Order.
तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि ब्रिटानी संसद के अध्यक्ष जॉन बर्को कह रहे थे कि 12 दिसंबर को चुनाव कराने की जो पेशकश थी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की, उसे संसद की मंजूरी मिल गई है और अब हम ये कह सकते हैं कि 12 दिसंबर को ब्रिटेन में आम चुनाव होंगे। इस बारे में और जानकारी के लिए हमने लंदन स्थित बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से बात की।
आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। अभी कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि व्हाटएवर हैपेंस नेक्स्ट ऑन ब्रेक्सिट दैट विल बी बेस्ड ऑन इलेक्शंस का जो आउटकम होगा, यू नो, एंड देर आर 3-4 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि अगर बोरिस जॉनसन मेजोरिटी से जीतते हैं तो फिर वो अपना विड्रॉवल डील एग्रीमेंट लेके हमें ईयू से निकालेंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शायद अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आए, नया पार्टी जीते, तो शायद वो सेकेंड रेफरेंडम का ऑफर दे सकते हैं यूके को। इसके अलावा नो डील ब्रेग्जिट के भी चांसेस है, लेकिन बहुत सारे यूके के बिजनेसेस, एमपीज और लोकल लोगों ने बोला है कि अगर नो डील ब्रेग्जिट होता है नेक्स्ट ईयर, वो यूके की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी अगला स्टेप यूके के लिए होगा जनरल इलेक्शन एंड हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर।
ब्रिटेन की सर्दी में, ब्रिटेन की ठंडक में 12 दिसंबर को चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज होगा?
आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज जनरल इलेक्शन, जैसे आपको पता है, वेदर इंडिया में हो या यूके में हो, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और फॉरगेट यू नो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पे विंटर में इलेक्शंस कराना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जैसे कि आपने बोला, ब्रिटेन का जो वेदर है कम नवंबर दिसंबर बहुत ही ठंड हो जाता है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो डे है वो शॉर्ट होती है, तो बहुत जल्दी से अंधेरा हो जाता है। इसके अलावा दिसंबर इज अ वेरी रॉन्ग टाइम शादी भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि दिसंबर में सब इवेंट हॉल सब बुक हो जाते हैं। तो अभी ये चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि लोकेशंस, ये पोलिंग स्टेशंस कहाँ पे रखे, क्योंकि बहुत सारे जगह क्रिसमस पार्टीज के लिए कंप्लीटली बुक हो गई है। तो लोग बोल रहे हैं शायद गैरेजेस में रखेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद ये पोलिंग स्टेशन लोगों के घर से बहुत दूर होगा। और एक और बात, एमपीज के लिए भी इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि अभी वो ठंड में लोगों के पास जाएंगे कैनवसिंग करने के लिए, और बहुत सारे एमपीज इस बात को लेके खुश नहीं है। और दिसंबर में क्रिसमस का महीना है, और क्रिसमस, जैसे आपको पता है, यूके का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो लोग इसको लेके भी खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, शॉपिंग करे, ना कि जनरल इलेक्शंस के बारे में सोचे। तो लोग बोल रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोग शायद वोट करने के लिए नहीं आए, और ये वोटिंग के टर्न आउट में भी असर पड़ सकता है।
तो ये थी लंदन से बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। और अब चलते हैं गुजरात। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी जोरों पर है, पर इस हाईटेक प्रोजेक्ट से गुजरात के कई किसान खुश नहीं हैं। वो अपनी ज़मीन के बदले चार गुनी कीमत चाहते हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता रॉक्सी छारा की ये रिपोर्ट।
जागृति पटेल का ज़्यादातर वक्त उनके चीकू के बगीचे में बीतता है। नवसारी के पाथरी में 3 बीघे में उनका बगीचा फैला है, जिनमें 90 चीकू के पेड़ हैं, जिनसे इतनी कमाई हो जाती है कि उनके परिवार का गुजारा हो जाए। पर अब उनके 60 चीकू के पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि उनके खेतों से होकर अब बुलेट ट्रेन की राह निकलेगी, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। जागृति कहती है,
बुलेट ट्रेन,
जब हमें पता चला कि बुलेट ट्रेन के लिए हमारी जमीन ले ली जाएगी तो झटका लगा। अगर जमीन नहीं रही तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। किसान की बेटी के रूप में जन्म लेना क्या गुनाह है? کہ کسان کی پتنی ہونا غلط ہے. ہمیں اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. ہمیں بازار بھاو کے حساب سے پیسہ ملنا چاہیے. ہم سرکار کے خلاف نہیں ہیں پر ہماری بات سنی جانی چاہیے.
ایسے کئی کسان ہیں جن کی کھیت کی زمین پر بلٹ ٹرین کی لائن بچھائی جانی ہے. ان کا کہنا ہے کہ زمین کے صحیح دام کے لیے کسی نے ان سے بات نہیں کی ہے. نوساری کے ہی مانک پور گاؤں میں رہنے والی 74 سال کی منجو بین دیسائی کے پاس ایک بڑی جوت ہے پر ان کی 2 بیگھہ زمین اب سرکار لے لے گی. منجو بین کہتی ہے
سرکار تو ہم نے وارے کہیں ہماری زمین کی قیمت اپا راجیج نہ تھی. جو ہماری زمین کی قیمت
میرے پاس کھیتی کے علاوہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. سرکار ہماری مانگ کے مطابق ہماری زمین کے دام نہیں دے رہی ہے. ہم اپنی زمین کے لیے 60 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. سرکار دے دے گی تو ہم یہ زمین دے دیں گے اور اگر نہیں دے گی تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے. جان دے دیں گے پر زمین نہیں دیں گے.
احمد آباد اور ممبئی کے بیچ سال 2022 سے بلٹ ٹرین چلانے کی تیاری ہے. کچھ کسان اپنی زمین کے مدوں کو لے کر ہائی کورٹ بھی گئے تھے پر ستمبر کے مہینے میں ان کی اپیل خارج ہو گئی تھی. کل 5400 زمین مالکوں میں سے 3100 اپنی زمین سرکار کو دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں پر کئی کسان اپنی زمین کی قیمت سے 4 گنا زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں. این ایچ ایس آر سی ایل کے ایم ڈی اچل کھرے کہتے ہیں
مارکیٹ اس پورے معاملے میں بازار بھاؤ کا دھیان رکھا گیا ہے. ضلع پرشاسن نے زمین کے بھاؤ طے کیے ہیں. گرامین علاقوں میں زمین بھاؤ کا 4 گنا زیادہ ہے اور شہری علاقوں میں 2 گنا. اس کے علاوہ ہم 25% زیادہ انسینٹیو بھی دے رہے ہیں. ہاں نوساری میں دام تھوڑے کم ہے. ہم نے اس کی جانکاری سرکار کو دے دی ہے. اب سرکار اس معاملے کو دیکھے گی.
حالانکہ نوساری سے بی جے پی سانسد سی آر پاٹل 4 گنا قیمت دینے پر سہمت نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ سرکار اس معاملے کا حل ڈھونڈ رہی ہے. بلٹ ٹرین کے لیے استعمال میں لی جانے والی زمین کو لے کر فی الحال سرکار اور کسان آمنے سامنے آ چکے ہیں. روکسی کاگنیکر چھارا, بی بی سی نیوز نوساری.
اور اب کھیل سماچار.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں جوتکا سنگھ اور آج سب سے پہلے بات کشتی کی. جونیئر ایشیا چیمپئن شرون کو ہنگری کے بوڈاپیسٹ میں شروع ہوئی انڈر 23 وشو کشتی پرتیوگتا میں 65 کلوگرام بھار ورگ کے کوارٹر فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ جونیئر وشو چیمپئن شپ کے پورو کانسے پدک وجیتا ویر دیو گلیا نے 79 کلوگرام بھار ورگ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. پرتیوگتا کے پہلے دن فری اسٹائل ورگ میں بھارت کے 5 پہلوان نوین 57 کلوگرام بھار ورگ میں, شرون 65 کلوگرام بھار ورگ میں, نوین 70 میں, ویر دیو گلیا 79 میں اور آکاش انتل 97 کلوگرام بھار ورگ مقابلوں میں اترے. بھارت کی امیدیں شرون پر ٹکی ہوئی تھیں جو جونیئر ایشیا چیمپئن ہے اور انہیں پرتیوگتا میں دوسری وریتا ملی. اور اب بات بیڈمنٹن کی کرتے ہیں. سائنا نہوال اور لکشے سین کی نظریں کل سے شروع ہوئے سارلور لکس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ پر ہیں. لندن اولمپک کانسے پدک وجیتا سائنا نے جنوری میں انڈونیشیا ماسٹرز خطاب جیتا تھا. اس کے بعد سے وہ خراب دور سے جوجھ رہی ہیں. یہاں پہلے دور میں ان کا سامنا جرمنی کے فیبینے سے ہوگا. وہیں جانے سے پہلے بات فٹ بال کی. آج آئی ایس ایل میں آمنے سامنے ہوں گی چنئین اے ایف سی اینڈ اے ٹی کے کولکتہ. کھیل سماچاروں میں آج اتنا ہی.
اور اب پرمکھ سماچار.
بی بی سی سماچار. برٹن میں آگامی 12 دسمبر کو عام چناؤ ہوگا. برطانوی سانسدوں نے 12 دسمبر کو عام چناؤ کرائے جانے کے پکش میں ووٹ دیا ہے. پچھلے 5 ورشوں میں یہ برٹن کا 3را عام چناؤ ہوگا. بھارت پرشاست کشمیر کے کلگام ضلع کے کاترسو گاؤں میں منگلوار کو چرم پنتھیوں نے 5 مزدوروں کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے. یہ حملہ ایسے سمے میں ہوا ہے جب یوروپی سنسد کا ایک پرتنیدھی منڈل جموں کشمیر میں زمینی حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا ہوا ہے. لبنان میں پچھلے 2 ہفتوں سے چل رہے ویرودھ پردرشنوں کے بیچ پردھان منتری سعد الحریری نے اپنے استعفے کی پیشکس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لبنان راجنیتک گتیرودھ کی استھتی میں پہنچ گیا ہے. روسی ادھیکاریوں نے ترکی کو بتایا ہے کہ اتر پوروی سیریا میں بنائے جا رہے سرکشا کوریڈور سے کرد لڑاکوں کو ہٹائے جانے کا کام پورا ہو چکا ہے. بی بی سی سماچار.
نمسکار, بھارت کا یہ انک یہیں سماپت ہوتا ہے. آج اسٹوڈیو کی ذمہ داری سنبھالی دیپک جسروٹیا نے. آپ سے اگلی ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے کارکرم دن بھر میں, لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں بی بی سی ویب سائٹ hindi.com پر. اور اب اقبال احمد کو دیجیے اجازت. نمسکار.